ये सरहदे गुरुओं की सरहदे हैं, ये सरहदे दादा छोटू राम की सरहदे हैं, ये सरहदे चौधरी चरण सिंह की सरहदे हैं, ताऊ देवी लाल की सरहदे हैं, ये सरहदे बाबा टिकेश की सरहदे हैं, ये सरहदे संसद को घेरे किसानों के वजूद की सरहदे हैं। इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से आना पड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
नमस्कार। तो ये 7 साल की सनिका पटेल हैं, 3री कक्षा में पढ़ती हैं, किसान की बेटी हैं और 4-5 सालों से किसान आंदोलन में पहुंचकर आंदोलनकारियों की हौसला अफजाई करती हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के आलनपुर गांव की निवासी हैं। सनिका का यह संबोधन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर था। वो 3 दिन के लिए दिल्ली आई थी और कार्यक्रम में आगे सनिका से हम बात करेंगे आज। तो ये किसान आंदोलन जो है आज 41वें दिन पहुंच चुका है। बैठकों के दौर की खबरें आज भी आती रहीं, लेकिन इस आंदोलन को सजग बनाए रखा है आपसी भाईचारे और सहयोग ने। देश की राजधानी के मौसम भी किसानों का सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ठंड और बारिश के बीच दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे रहे। इस ठंड के बीच किसानों ने बिना शर्ट के प्रदर्शन किया और अपने संकल्प का संदेश दिया। उधर बारिश का असर मीडिया सेंटर पर ना पड़े इनके, इसलिए ईंट सीमेंट से आज इसे मजबूती दी गई है। टीकरी बॉर्डर पिलर नंबर 755 पर मीडिया और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन को, जो वहां की जगह है, उसको एक तरह से पक्का कर दिया गया। तो आज रोहतक और जींद से महिला किसान ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ी हैं। अपना साथ और सहयोग जताते हुए उन्होंने ये भी अपना मोर्चा खोल लिया है। महिला किसानों की चेतावनी है कि 26 जनवरी को लाल किले तक पहुंचेंगी।
को हमने सब ट्रैक्टर चलाने सीख लिया है, हम जाएंगे अंदर जाएंगे बस।
अब सरकार से बातचीत भी चल रही है, अब तो क्या लगता है समाधान होगा?
नहीं होगा तो फिर हमारे सीनियर बताएंगे क्या होगा।
पूरी तैयारी है?
पूरी।
कब तक रुकेंगे यहाँ?
जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती।
ये सरकार की समझ नहीं है कि किसानों को कुछ पता ही नहीं है। ये सानू दस रहे की किसान नहीं है जो ट्रैक्टर की घूम रहे हैं। साड़ी कली कली पंजाब दी औरत नू ट्रैक्टर ट्राली सब असी चलाना जानते हैं, सब अपने ट्रैक्टर लैके असी इत्थे पहुंचे हैं दिल्ली दे विच। अस तां हक ते इन्हां दे मतलब के धर के ना गोडा सारे हक अपने वापस उन्ना टाइम नहीं जावांगे जिन्ना चेरे काले कानून रद्द नहीं ना करदे। असी इत्थे बैठांगे, 2024 तक बैठना पिया असी बैठांगे, क्योंकि राशन पानी असी अपना नाल लैके आए हैं।
यदि सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती ना, यहाँ तो 10-12 ट्रैक्टर हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, वहाँ लाखों की संख्या में लेडीजें अपने ट्रैक्टरों के साथ वहाँ पहुँचेंगी और परेड करेंगी लाल किले पे। ये इतिहास होगा और अब हम इस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। महिला शक्ति मैदान में आ चुकी है।
तो कितनी लेडीज ट्रैक्टर यहाँ लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग पाई है?
यहाँ ट्रेनिंग ले चुकी है लगभग 50-100 के करीब।
तो जब यहाँ 50 सकते हो तो दिल्ली कितनी है?
दिल्ली कम से कम लाखों की संख्या में होंगी महिलाएं, हर जिले में तैयारी चल रही है।
तो सरकार को संदेश देना चाहते हो आप?
संदेश सरकार को संदेश देना चाहते हैं, भाई आप टेलर देख लो, हमें ऐसा मौका मत दीजिए कि हमें फिल्म दिखानी पड़े, नहीं तो लाल किले के आखिरी बार लाल किले पे कुछ नजारा और ही होगा।
तो इस बीच बागपत से कुछ किसान ट्रॉलियों में 45 क्विंटल गुड़ लेकर किसानों को बांटने के लिए पहुंचे।
बागपत का गुड़ है जी। अच्छा। बड़ौत के पास दहागांव है यूपी में।
अच्छा।
वहाँ से है जी।
वहाँ से है वो?
हाँ जी।
कुल कितना गुड़ लेकर आए?
45 क्विंटल माल है जी।
अच्छा।
हाँ जी।
तो ये सारा किसान
सेवा में है जी सब?
अच्छा। तो आपका अपना बनाया हुआ गुड़ है?
हाँ जी अपने को।
अच्छा।
अपने कलेसर से जी।
अच्छा अच्छा। ताऊ आप भी वहीं से आए हो?
हाँ दाह से ही सब। दहागांव है बड़ौत के से 20 किलोमीटर।
हमारा 100 क्विंटल माल और आएगा जी।
अच्छा।
इससे पहले 8 दिन पहले हम फिर दे गए थे 40 क्विंटल माल।
अच्छा।
और अब ये बांट के फिर आएंगे जी।
तो आप गुड़ी लेकर क्यों आए हो?
गुड़ी सर्दी के लिए सबसे अच्छी चीज है जी।
अच्छा।
हाँ। तो इसीलिए हम गुड़ लेकर आते हैं जी।
अच्छा।
तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गुड़ के लिए मार मची हुई है और गुड़ ये काफी अच्छा है, ये इनके इन्होंने खुद गुड़ तैयार किया है और वही गुड़ 45 क्विंटल ये गुड़ ट्रैक्टर में भर के लाए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर जो किसान है वो किस तरह से गुड़ ले रहे हैं। जी बताइए।
हाँ जी,
आप कहाँ से आए हैं?
हम दाह से आए, चोगामा क्षेत्र पड़े, गांव दाह पड़े।
अच्छा,
नाम गुल्लू रोना है जी।
ये गुड़ आपने खुद तैयार किया है?
हाँ, ये खुद तैयार करे हमने, अपने गन्नू का किसान ने सबने इकट्ठे करके गन्ना दिया, उससे 45 क्विंटल गुड़ करवा कुल्लू में।
अच्छा।
और जब सेवा में लग रहे हैं जी, पहले भी आए थे, फिर सेवा कर रहे हैं।
पूरे गांव के किसानों ने दिया है?
हाँ, नहीं नहीं, 20-30 किसानों ने इकट्ठा करके दिया है जी।
अच्छा।
सेवा कर रहे हैं जी लोगों की। अब लाए जी, फिर ले आऊंगे 50-100 क्विंटल जी।
तो आज किसान संगठनों की करीब 4 घंटे बैठक चली, उन्होंने फैसला लिया कि आंदोलन को और अब व्यापक बनाएंगे। 7 जनवरी को सुबह 11 बजे ट्रैक्टर रैली होगी जो 4 दिशाओं से आगे बढ़ेगी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर के अनुसार कुंडली, सिंघू, गाजीपुर, टीकरी, मेवात के रिवासन से रैली निकलेगी और इसमें दिवंगत, आपको बता दें, जो किसान नेता हैं उनको याद भी किया जाएगा। ये हम आपको रूट मैप दिखा रहे हैं। तो ये भी है कि हर गांव से 10 ट्रैक्टर निकलने की बात सामने आ रही है। 7 तारीख की रैली को ट्रेलर बताया जा रहा है 26 जनवरी के लिए। 13 तारीख को लोहड़ी के दिन किसान संकल्प दिवस होगा, कहा जा रहा है इस दिन 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड निकलेगी। आइए सुनते हैं किसान नेता ने क्या कहा।
30 तारीख तक एक 2 हफ्ते का जन जागरण अभियान, भंडा फोड़ अभियान। इसी के बीच में कहना चाहता हूं कि जो हमारा पहले से अनाउंस किए हुए प्रोग्राम है वो है कॉरपोरेट हाउसेस के खिलाफ, खास करके अडानी और अंबानी का प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज के खिलाफ वो जारी रहेंगे। बाइकआउट, उनका बाइकआउट जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजे के ऊपर पर्ची नहीं लगेगी, वो खुले रहेंगे। और साथ ही ये जो एनडीए के पार्टनर्स, बीजेपी और उसके जो जितने भी घटक पार्टीज उसके साथ है एनडीए में, उनको एक्सपोज करना, उनका बाइकॉट करना, धरने लगाना, काले झंडे दिखाना वगैरह वगैरह, वो जो हमारा एक किसानों का, जनता का प्रोग्राम है वो भी पूरे देश में इम्प्लीमेंट रहेगा। 18 तारीख को महिला किसान दिवस होगा। 23 तारीख को ये सुभाष चंद्र जी के जन्मदिन के ऊपर आजाद हिंद किसान दिवस होगा। और 25-26 को हमने पहले बताया कि 26 को एक किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी
जी। सुबह खबर आई कि प्रधानमंत्री पंजाब से 2 बीजेपी के नेताओं से आज मिलेंगे और किसानों के रुख का आंकलन करेंगे। तो बीजेपी के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल और सुरजीत कुमार जियाणी शाम करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। पहले यही हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की नेताओं से बातचीत के क्या मायने हैं। 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं यहाँ पर, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं और साथ ही देवेंद्र शर्मा भी हमारे साथ, जो एक कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। पहले विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर ये सुबह खबर आती है और इस समय प्रधानमंत्री अगर 2 किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, पंजाब के बीजेपी के नेताओं से, क्या मायने हैं इसके?
देखिए, इसके एक चीज साफ है कि अब प्रधानमंत्री ने सीधे किसान आंदोलन को लेकर के दिलचस्पी लेनी शुरू की है। अभी तक जाहिर है मंत्री बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों को, किसान जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कोई अपना हस्तक्षेप नहीं किया था। वो अपने वक्तव्य में जरूर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने किसानों को गुमराह कर दिया है, किसानों को भ्रमित कर दिया है। वो कच्छ में गए, वहां के किसानों से बात की, उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं से अगर वो मिल रहे हैं, पंजाब के जो किसान नेता हैं, तो निश्चित रूप से इसके 2 मायने हैं। पहला तो ये है कि जो सूचना इस किसान आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री जी को सरकारी तंत्र से मिली है, यानी जो खुफिया तंत्र है, जो राज्य सरकारें हैं, हरियाणा सरकार है या पुलिस है, उसके जरिए जो सरकार को सूचना मिलती है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जाती है, उसके अलावा वो सीधे अपने पार्टी तंत्र से जो है एक फीडबैक ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं कि भाई ये जो किसानों का आंदोलन है इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल हैं, कौन इसकी की बैकिंग में है, आढ़तियों का क्या रोल है, किसान जो है उनका साइज क्या है, कि मतलब वो बड़े किसान है, छोटे किसान है या मध्यम किसान है, किस किस वर्ग के लोग हैं, क्या हरियाणा पंजाब के ही किसान है या और राज्यों के किसान भी इसमें शामिल हो रहे हैं, पंजाब में इस किसान को ले, इस आंदोलन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, किस हद तक पंजाब के लोग इससे जुड़े हुए हैं, इससे राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी स्वयं सीधे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं, खास करके तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी की खरीद को अनिवार्य बनाने की मांग जो है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही सीधे कॉल लेनी है, उनको ही फैसला करना है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है विनोद जी, आप ये सही कह रहे हैं कि तमाम आकलन प्रधानमंत्री कर रहे होंगे, क्योंकि अगर इस कानून पर कोई भी फैसला लेना है सरकार की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ले सकते हैं। देवेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप किस तरह का असर अब तक इस आंदोलन का देख रहे हैं, अगर आंकलन करें, क्योंकि आप दोनों तरफ को समझते हैं, तो उस लिहाज से आपका आंकलन क्या है? आज 41वें दिन यह आंदोलन पहुंच चुका है, और आज जिस तरह से जो बैठक हुई किसानों की, उनका ये कहना था कि हम अपने आंदोलन को और गहरा और व्यापक बनाएंगे, तो आपका आंकलन क्या है इस समय? आज
देखिए, ये जो प्रोटेस्ट या मूवमेंट जिसको हम कह रहे हैं आजकल फार्मर्स का हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम इसको दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैंने शायद कहीं देखा या पढ़ा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन और इतना मजबूत आंदोलन मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं पर भी देखा गया है। और इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से समाज आज किसानों के साथ खड़ा है, अगर स्पेशली अगर आप पंजाब में आके देखते हैं, गांव में जाके गतिविधियां देखते हैं, गांव ही क्यों, शहरों की देखिए, हमारे हर शहर से रिपोर्ट्स रोजाना यहाँ अखबारों में छपती हैं कि आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, या कल आप देखें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, या आर्मी वेटरन्स, स्पोर्ट्स पर्सन, या समाज का हर एक तबका जो है आज किसानों के साथ खड़ा है, चाहे वो सिंगर्स हैं या बच्चे बच्चे, जैसे अभी आपने एक बच्ची को दिखाया था बोलते हुए स्टेज पर, वो यहाँ पर भी सारे पंजाब में हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अद्भुत आंदोलन है, एंड जैसा इंग्लिश में कहते हैं कि आइकॉनिक मूवमेंट है ये फार्मर्स की। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सरकार जो है इस जो डायलॉग में जो हम देख रहे हैं, कम से कम 7 राउंड जो हो चुके हैं, ये जो विनोद जी ने जैसे पहले कहा कि ये जो दोनों बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, ये जो किसानों की जो बात प्राइम मिनिस्टर के साथ जो नुमाइंदे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, और जानते हुए कि इनका दोनों का कितना बड़ा रोल रहा है, फार्मिंग सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह पंजाब की, और मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट जो एक जो वार्ता होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ या हुई होगी जो आज, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है शायद ये छोड़कर आएंगे।
क्योंकि आपसे एक ही बात समझना चाहूंगी, अब तक 41 दिन हो चुके इस आंदोलन को, यही कहा जा रहा है कि ये तो पंजाब के किसान है, हालांकि आज जब ये आंदोलन के बाद बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हरियाणा संगठन के भी उन्होंने भी बताया, बात रखी अपनी, और जो किसान आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं तो हमारे यहाँ तो देश भर से लोग आ रहे हैं, लेकिन क्यों एक तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ पंजाब हरियाणा के हैं, कुछ इलाके यूपी के आ गए, क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित है या इसका असर बाकी अन्य राज्यों में भी है?
देखिए, ये एक मैसेज कन्वे करने की बात जो हो रही है, कोशिश हो रही है बहुत दिनों से कि सिर्फ ये पंजाब का आंदोलन है या सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है, मुझे लगता है कि ये जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये डेलिबरेट है, और क्यों है ये भी हम समझते हैं। देखिए, एक चीज हम ना भूलें कि सारे देश में जो क्यों इतना जो इसी तरीके से जो गुस्सा है किसानों का सड़कों पर क्यों नहीं है, हालांकि आज देख रहे हैं कि हम बहुत से प्रदेशों पर अपने ही लेवल पर बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सी अलग अलग किस्म के उनके अपने तरीके हैं उसको एक्सप्रेस करने के, वो हम देख रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर हम सोचें कि उड़ीसा से भी लोग आए, मध्य प्रदेश से भी लोग आए, महाराष्ट्र से भी लोग आए, इतने नंबर्स में नहीं आ सकते जितने की जो नजदीक के क्षेत्र हैं वहां से लोग आ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम ये ना बोलें कि मुख्यतः जो डिमांड है वो ये है कि एमएसपी को लीगल करने की बात है। शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि 71% किसानों को तो पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें एमएसपी डिलीवर होता है। तो जब किसानों को पता ही नहीं है तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट है वो पंजाब हरियाणा में इसलिए केंद्रित है क्योंकि ये लोग समझते हैं, और इनकी जो डिमांड है शायद सारे देश के किसानों को अब ये समझ आ रही है कि उन्होंने क्या खोया या क्या नहीं पाया आज तक। क्योंकि अब हम देख रहे हैं, एक स्टडी मैं छोटी सी बताना चाहता हूं, अभी एक वायर की एक स्टडी थी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में देश के ही उन्होंने सरकारी पोर्टल का डाटा उन्होंने लिया, उसको एनालाइज किया और कहा अक्टूबर नवंबर में 2 महीने में ही किसानों को अगर एमएसपी पे अपनी चीजें बेच पाते, मैं हर एक क्रॉप की बात कर रहा हूं सिर्फ वीट एंड पैडी की नहीं, तो किसानों को 1900 करोड़ रुपए का फायदा होता। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये स्टडी है कि 1900 करोड़।
देवेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल सही है और अभी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश से खबर दिखाई थी, उसकी रिपोर्ट थी और उसपे मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञान भी लिया कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें कितनी खामियां थी और फिर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला नहीं हम एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसमें दोनों की बातें सामने आएंगी। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां सामने आ रही। विनोद जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपको याद होगा जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और जब 2-3 दौर की बातचीत कारगर साबित नहीं हुई थी तो प्रधानमंत्री की तरफ से या ये सरकार की तरफ से कोशिश थी कि तमाम मंत्री हैं और तमाम विधायक हैं अपने एरियाज में जाएंगे और समझाएंगे कि ये कृषि कानून कितने फायदेमंद हैं। उस मुहिम का क्या हुआ, क्योंकि आज जो किसानों की बैठक हुई उनका ये कहना था, एक दो शब्द थे कि ये गहरा करेंगे इस आंदोलन को हम और व्यापक करेंगे, तो हम पूरा वो नहीं दे सकते क्योंकि उसमें ये सब लिखा था कैसे जिलों में और छोटी छोटे गांव में किस तरह से बैठकें करनी है किसानों को। लेकिन जो ये स्ट्रैटेजी है पहले सरकार की तरफ से फिर किसान भाइयों की तरफ से, ये कितनी कारगर होती दिख रही है? और सरकार की पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि राजनीतिक तौर पर बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री आज खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं।
देखिए जिस मुहिम की आप बात कर रही हैं जिसमें मंत्रियों को जाना था, बीजेपी के नेता सांसद सबकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो जाके गांवों में इसको कानूनों का प्रचार करेंगे, कृषि कानून कितने किसानों के हित में है। अगर वो मुहिम सफल हो रही होती तो शायद प्रधानमंत्री जी को पंजाब के दो अपनी पार्टी के किसान नेताओं को बुला के बात करने की जरूरत नहीं होती और केंद्र सरकार के मंत्री भी शायद बातचीत से अपने को नमस्ते कर लेते कि हम तो देश के किसानों को समझाने में कामयाब हो गए और अब ये लोग बैठे रहे। अब ये उनको लग रहा है वो जब वो जा रहे हैं गाँव में, जो देवेंद्र जी ने भी कहा कि अब जो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा जो राज्य हैं जो इलाके हैं वहां के किसानों को एक चीज समझ में आ रही है कि अरे हमको तो एमएसपी मिली नहीं और एमएसपी के तो इतने फायदे हैं, क्या हरियाणा और किसान और पंजाब के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है उनकी आमदनी इतनी ज्यादा है और वो इसीलिए सड़क पर बैठे हुए हैं और हमको तो ये मिला ही नहीं, ये हमको भी मिलना चाहिए। तो एमएसपी का मुद्दा धीरे धीरे ये देशव्यापी होता जा रहा है और जिन किसानों को जो 92% किसानों को एमएसपी नहीं मिला वो भी उनके अंदर भी एमएसपी लेने की एक इच्छा जागृत हो गई है।
लेकिन क्या विनोद जी वो जो किसान हैं और हमारे हम पंजाब हरियाणा यूपी के कुछ किसानों को देख कितने सबल हैं, अपने आप खिला रहे हैं औरों को भी खाना खिला रहे हैं, एक अन्नदाता हैं वो, भूमि पुत्र हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो किसान है जिसको हम अन्नदाता कहते हैं जो एक बड़ा वर्ग है वो तो आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर स्थिति पे रहता है, तो उस लिहाज से उसमें क्यों एकता क्यों नहीं नजर आ रही या उसको जरूरत नहीं है या उस तक पूरे ज्ञान नहीं पहुंचा है, आपका क्या आंकलन है?
नहीं, जरूरत उसको है और जरूरत इसलिए है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब उसको उसने फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन जो हालत अभी बिहार में जिस तरह से मक्का और धान जो है आधे दाम पर बिका, वहां पर खरीदा गया और यहाँ पंजाब में आकर के वो बिका, तो वो सारी चीजें समझ में, वो एक बड़ा कृषि का एक अर्थशास्त्र का बड़ा मकड़ जाल है जिसमें वो फंसे हुए हैं, लेकिन वो उससे अब निकलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी देवेंद्र जी ने कहा, मैं भी जगह जगह स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो भी रहे हैं लेकिन चूंकि नेशनल मीडिया का सारा फोकस दिल्ली के आंदोलन पर है इसलिए ये जो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है वो फोकस में ज्यादा है। और
ठीक है,
देखिए प्रतिनिधि तो अन्य राज्यों के किसान नेताओं का भी है, मध्य प्रदेश के कक्का जी जो लगातार डटे हुए हैं, उड़ीसा के किसान हैं, महाराष्ट्र के हैं, मैं तो कईयों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तमाम लोग आए हुए हैं, तो ये मुद्दा तो ये बनी गया है।
ठीक है, ठीक है विनोद जी, मैं देवेंद्र जी आपसे एक सर, अब एमएसपी सबको देना पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए, तभी शायद कानून बनाने से हिचक रही है, रास्ता क्या आप देख रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि पूरे तीनों कानूनों को आप हटा दीजिए, रिपील कर दीजिए, सरकार नहीं मानेगी, कोई रास्ता निकलता हुआ आप देख रहे हैं?
देखिए ये तो ठीक है कि सरकार कह रही है कि हम ये इसको सारे देश में एमएसपी को लीगलाइज नहीं कर सकते या इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मेरा मानना थोड़ा इससे हटकर है, मेरा मानना है कि ये हम कर सकते हैं और करने की जरूरत भी है। अब देखिए अगर इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है कि किसान परिवार की आधे देश में 17 राज्यों में अगर सालाना उनकी इनकम देखें तो मात्र 20,000 रुपये साल की एक किसान परिवार की इनकम है, अगर ये 20,000 रुपये मतलब 1700 रुपये से कम में किसान आधे देश में अगर गुजारा करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जरूरत देश में क्या होगी कि आज इन सबको एमएसपी मिलना चाहिए। यह कहना कि साहब इतना बजट नहीं है, मुझे लगता है कि यह जानबूझकर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है कि हरे हाय बजट खत्म हो जाएगा। जब 7वां वेतन आया था और जो किसी ने पूछा था कि इसका कितना एडिशनल बर्डन होगा, कभी किसी ने पूछा कि यह पैसा कहां से आएगा, क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट कहती है कि जब 7वां वेतन आयोग सारे देश में इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसमें 4.5 लाख से लेकर 4,80,000 करोड़ रुपए का एडिशनल अतिरिक्त खर्चा हर साल होगा। कभी किसी ने बोला ये पैसा कहां से आएगा? अगर आज हमने 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों को देना हो जाए तो देखिए हाहाकार मच जाएगा, सब ये पैसा कहां से आएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा और ये कितने लोगों को जाएगा? 50% पॉपुलेशन को जाएगा। मेरा मानना है कि इट इज टाइम टू रैशनलाइज ऑल दीज काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज ताकि हम देख पाए कि किस तबके को कितना मिल रहा है। और आफ्टर ऑल किसान को हम कब तक इग्नोर करेंगे?
क्या उसके बच्चे हम अपने किसान को इग्नोर करेंगे? आपने सही बात की और हम समझते हैं कि अगर प्रधानमंत्री खुद बैठक कर संज्ञान ले रहे हैं तो समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये मसला है, कितना अहम है, कितना गंभीर है और जो पूरा किसान वर्ग है किस तरह से मजबूती से एक साथ खड़ा हुआ है। आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज 41वां दिन है और जिस तरह से हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में सनिका पटेल को बोलते हुए सुनाया था, मध्य प्रदेश के हरदा की वो 7 साल की बच्ची जिसके भाषण से जो सिंघू बॉर्डर पर घर बार छोड़कर बैठे किसानों के मन में जोश पड़ता रहा, तो सनिका को मिट्टी की बेटी भी कहा जाता है। सनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। सनिका, थैंक यू सो मच, आप जुड़ गई हो हमारे साथ। आपको किसानों की तो बहुत चिंता है, क्यों बताएंगे आप? यस बेटा, सनिका आप मुझे सुन सकती हैं?
हाँ सुन रही हूँ।
आपको किसानों की बहुत चिंता होती है, आप तो सिंघू बॉर्डर में भी बोली दिल्ली आई थी।
हाँ आई थी मैं दिल्ली।
क्यों चिंता होती है आपको?
क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूँ, मुझे किसान का दर्द पता है इसलिए।
किसान, आपको मिट्टी की बेटी भी कहा जाता है, पता है क्यों?
हाँ
क्यों?
मिट्टी की बेटी यानी गांव की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी ग्रामीण संस्कृति के जुड़ाव की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी पुरखों के सम्मान की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी किसान की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी देश की बेटी। मैं हूँ इस देश की बेटी, मुझे ये देश बहाता है, परे जो वंदना इसकी मुझे वो कंठ बहाता है। मेरे इस देश की मिट्टी में मेरी जान बसती है, मेरी सासों से पहले भी ये हिंदुस्तान आता है, मेरी सासों से पहले भी ये हिंदुस्तान आता है।
बहुत खूब। एक और मैंने सुना है आप कविता बहुत अच्छा पढ़ती हैं, मसाले चल पड़ी हैं, बलबीर सिंह चीमा की कविता। हाँ। है मसाले चल पड़ी हैं, सुनाएंगी?
हाँ
जी
हाँ। ले मसाले चल पड़ी हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी, कह रही है झोपड़ी, और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। कफन बांधे हैं सिरों पर, हाथों में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन
जी,
लोग मेरे गांव के, लोग मेरे गांव के। दे रहे हैं देख लो अब, दे रहे हैं देख लो अब वो सदाएं इनकलाब, हाथों में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के, हाथों में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के।
सनिका आप 5 साल की थी तो आप राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था वहां पर भी गई थी, तो आप तैयारी कैसे करती हैं अपने आंदोलन में? जी
मुझे पापा मम्मी सिखाते हैं।
पापा सिखाते हैं आपको ना, मेरी भी बात हुई थी उनसे। और हाँ। कोई कविता आप कहना चाहेंगी? आपने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया था, आप हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की कविता भी आपने पढ़ी थी।
हाँ।
बोलना चाहेंगी?
हाँ
सुनाइए।
बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसी यदि ज्वालाएं, निजहातों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
बिल्कुल, बहुत खूब। सनिका, आप दिल्ली आई थी, क्या आपके मन में था आज? आपने किसानों को देखा होगा बैठे हुए ठंड में, आप भी वहां पे थी, कुछ बता पाएंगी क्या मन में हुआ उनको देखकर मिलकर?
मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मुझे भी किसान का दर्द पता है, और मेरे पापा दादाजी और दादी खेत में जाते हैं तो मैं उनके साथ जाती हूँ, वो काम करते हैं थोड़ा तो मैं उनको देखती हूँ।
आपको क्या लगता है किसानों की जो मांगे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी सरकार से?
हाँ
जी, बताइए।
कि ज्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी ये 3 काले कानून आप वापस ले।
प्रधानमंत्री कहेंगे कि ये तो किसानों के फायदे के लिए हैं, तो आप उनको क्या समझाएंगी?
ये जो आंदोलन है, ये जो काले कानून है 3, वो किसानों के लिए अच्छे नहीं है। एक जो बिल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसान से उनकी फसल खरीदेंगी और अपने मनमानी करेंगी, और एक और जो बिल है उसमें है कि जब व्यापारी बाहर से खरीदी करेगा
जी
तो मंडियां खत्म हो जाएगी, फिर किसान अपनी फसल कहां पर बेचेगा?
बिल्कुल सनिका, आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी। आप 7 साल की हैं और आपने जो अपना दर्द बयां किया है और किसानों का दर्द जो बयां किया है, आप मध्य प्रदेश से आती हैं, पंजाब हरियाणा से भी नहीं आती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप आगे और बढ़ें और तरक्की करें और ऐसे ही आंदोलन में हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सनिका, थैंक यू। तो ये थी सनिका से बातचीत, मिट्टी की बेटी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और खबरें आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश से खास खबर आई है, उसका रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जाति के नाम पर कार्रवाई का एक और अजीब उदाहरण देखने को मिला है। ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने पर पुलिस ने नासिर नाम के एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और उसे हिरासत में ले लिया है। इस बीच बजरंग दल की नगर इकाई के नेता का दावा है कि उन्होंने अपनी पहल पर इस शख्स को जेल भिजवाया है। दिलचस्प ये है कि इस नाम के जूते बरसों से उत्तर प्रदेश में बिक रहे हैं, लेकिन जूते बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक जूते बेचने वाले को पकड़ लिया गया है।
छब्बीस साल के नासिर के घर में कोहराम मचा है। फुटपाथ पे तख्त रख के जूते चप्पल बेच के पेट पालता है, लेकिन बजरंग दल ने पुलिस से शिकायत की कि उसके कुछ जूतों पे ठाकुर लिखा है, वो जातीय दुर्भावना से ऐसे जूते बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने गरीब पटरी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया।
सूचना मिली कि एक जाति विषय जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है, हम जाति अपनी विशेष पे नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो। उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली, हम तुरंत दुकान पर पहुंचे, अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा, और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पर दिया गया, वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है। डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने, और जब उसके उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया और उसके 4 जोड़ी जूते बरामद किए गए। उसके बाद वो थाने में बंद है, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञात निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ गाजियाबाद भी पहुँच गए हैं।
दरअसल आगरा में ठाकुर फुटवेयर नाम की करीब 70 साल पुरानी फर्म है। अब उनके इस कारोबार को उनकी तीसरी पीढ़ी चला रही है। भाइयों में बंटवारे के बाद अब एक फर्म का नाम ठाकुर फुटवेयर और दूसरे का नाम ठाकुर शूज हो गया है। फर्म के लोग कहते हैं कि उनके पुरखों ने यह नाम रखा है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, हो सकता है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश हो।
हम लोगों का नाम है ठाकुर फुटवेयर कंपनी, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है। हम कभी भी किसी भी फुटवेयर में ठाकुर नाम नहीं लगाते हैं। हम लोग मशहूर हैं ठाकुर के नाम से, लेकिन आज के दौर हम लोग उसमें लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TFC, उसकी फुल फॉर्म है ठाकुर फुटवेयर कंपनी। क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर हैं सब ठाकुर हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहते कि कहीं भी किसी को कोई आहत पहुंचे, ये किसी ने बदनाम करने की कोशिश की गई है।
नासिर का परिवार बहुत गरीब है, वो फुटपाथ पे जूता बेच के गुजर बसर करता है। उसके पिता बग्घी चलाते हैं, टूटे फूटे छप्पर के घर में गुजारा होता है। वो दिल्ली और आगरा की थोक की बाजार से थोड़े बहुत जूते खरीद के सड़क के किनारे बेचता है। अब उसके घर में मातम है। बजरंग दल की शिकायत पे पुलिस ने उसके खिलाफ IPC के दफा 153A, 323 और 504 में मुकदमा दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि 2 दिन तक वो उसे थाने में बंद किए रहे। अब बड़े फख्र से पुलिस ने ट्वीट किया कि इस प्रकरण में वर्तमान विधि व्यवस्था के अनुसार जो सुसंगत था वह कार्रवाई की है। यदि पुलिस कार्रवाई ना करती तो बहुत सारे लोग उल्टी ऑब्लिक भिन्न प्रतिक्रिया देते, अतः पुलिस ने नियम का पालन किया है। कृपया इसे इसी रूप में देखें।
विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपने दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलाटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस की इस कार्रवाई को खुद UP के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे लोग गैर कानूनी बता रहे हैं। जूते की कई फर्मों के नाम के आगे ठाकुर लफ्ज जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने उनके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किया है, सरकार ने उनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन किया है, उसी नाम से वो इनकम टैक्स देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसे बजरंग दल से सलाह ले पहले कि इस नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वरना पुलिस वाले गरीब पटरी दुकानदार को इसी तरह पकड़ के जेल भेजते रहेंगे। बुलंदशहर में मनीष शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।